आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्छायाणं, नमो लोए सवसाहूणं, लक्ष्मीनिवासनिलयं, विलीनविलयं निधाय रदिवीरं, आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य देव ने यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ लिखा है, उस पर क्षुल्लक मनोजी वर्णी सहजानंद जी के प्रवचन है और उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 72 पर हम आ गए। 72 सम्यक्त्व की महिमा चल रही थी अपने 15 नंबर के श्लोक में, वहाँ ये बात हमने देखी थी कि सम्यक को बिना भी उपशम आदि जो पाया जाता है, शास्त्र का ज्ञान पाया जाता है, कुछ मुनि योग्य श्रावक योग्य आचरण किया जाता है, तप किया जाता है, वो सब कैसे है तो बहुत भारी बोझ है, जिसे पाषाण का बोझ होता है वैसा है। और वही बात सम्यक को होने पर जैसे हीरे जवाहरात होते, वो भी है पत्थर ही तो मूल्यवान है, वैसे इसके भी मूल्य बढ़ जाता है। 72 पेज पर वो ऊपर से तीसरा पैराग्राफ, सम्यक्त्व की सहज दिशा। सम्यक्त्व की दिशा अलौकिक है। कहो एक बैल कहीं बैठा हुआ घास खाकर जुगाली कर रहा हो, जुगाली समझते ना, वागोड़े के गुजराती में रवंत करने, कहो उसकी दृष्टि ऐसी निर्मल हो जाए कि वह आत्मा की ओर झुके, अपने शरीर को भी भूले और शुद्ध ज्ञान ज्योति मात्र मैं हूँ ऐसी अनुभूति जगे। यद्यपि वह बैल बोल नहीं सकता है अक्षरों के रूप में, और इसी कारण जो ज्ञान और अनुभव करता है उसका अंतर्जल्प भी नहीं कर सके। क्या कहते हैं, हम बाहर भी बोलते हैं और अंतर्जल पर भी चलता है हमारा, यानी हम जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं ना कि मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ या मैं शरीर रूप नहीं हूँ, ये शब्दों में जो तो मन ही मन में शब्दों में ही विचार करते हैं, उसको कहेंगे अंतर्जल पर। उसके तो कोई भाषा का प्रयोग ही नहीं है ना, उसके बहिर्जल पर तो नहीं हो ही नहीं सकता, अंतर्जल पर भी नहीं है। यहाँ लिखा ना, बोल नहीं सकता अक्षरों के रूप में, और इसी कारण जो उसके ज्ञान और अनुभव हो रहा है उसका अंतर्जल्प भी नहीं करता, फिर भी इसमें कैसे नहीं आया, उसमें नंबर फोन अंदर का बज रहा है। यहाँ का नहीं आ रहा है, नहीं मुझे यहाँ ये कनेक्शन बराबर देखना पड़ेगा। शोभा का कौन है अंदर? आज कुछ गड़बड़ी हो गई है कनेक्शन की। चलो बीच में गैप हो गया। ये हम पढ़ रहे थे बैल कोई है उस यानी तीरंज के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर जल पर नहीं है परंतु अनुभव तो करता है, ज्ञान तो होता है उसके, शब्दों में अक्षरों में नहीं हो रहा परंतु उसका भाव भाषण है उसके। यह हमने पढ़ा अंतरजल्प भी नहीं करे फिर भी अनुभूति प्रत्येक सैनी पर्याप्त जीव के होने का अधिकार है। कहो वह सम्यक तो उत्पन्न कर ले। हाँ लब्धि अपर्याप्त संगी जीव को अधिकार नहीं है किंतु जितने भी संगी पर्याप्त जीव है उन्हें सम्यक का अधिकार है। हाँ अभी हम पेज नंबर 72 पर है, नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है सम्यक्त्व की सहज दिशा, उसमें ये बात हम पढ़ रहे थे। बैल का उदाहरण दिया है, तीरंज को बताना चाहते हैं संगी पंचेंद्रिय को कि बैठे बैठे उसके शुद्धात्मा की अनुभूति जग सकती कि मैं शुद्ध ज्ञान ज्योति मात्र हूँ, राग रूप में नहीं हूँ। तो उसका तो ज्ञान और अनुभव कर सकता है, वो अक्षरों में उसके कोई अंतर्जल्प या बहिर्जल्प नहीं होते हैं फिर भी अनुभूति उसकी चलती रहती है। ये बात हमने 4-5 लाइन में पढ़ी थी। लब्धि अपर्याप्त तो संगी भी हो तो भी वो तो एक तो अल्प आयु वाला जीव है और वहाँ तो केवल मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है, उनके तो सम्यक्त्व की तो योग्यता भी नहीं होती है। परंतु जितने भी संगी पर्याप्त जीव है, मिला ना 72 पेज पर नीचे से 6 लाइन, उन्हें सम्यक्त्व का अधिकार है। ऐसे पशु कहो सम्यक्त्व को पा ले। और एक मनुष्य जो साधु होकर बड़ी ऊंची तपस्या कर रहा है और वो कहीं विभाव में अटक रहा है, समझ में आते हैं ना? एक बाजू किसके साथ कंपेयर की, मुनि दीक्षा ले ली है, साधु होकर बड़ी ऊंची तपस्या कर रहा है और कहीं विभाव में अटक रहा है। विभाव में अटक है ना, वो राग में अपने को मान रहा है। वह कहो अपने विकल्पों में ही फंसकर सम्यक्त्व न उत्पन्न कर सके, यह बोझ भी सम्यक्त्व के बिना बोझ है। यह बोझ है नहीं, यह कोई जो तप आदि जो है वो सम्यक्त्व के बिना सारा बोझ है। ये शम की बात हुई, बोध की भी बात हुई, उसी के साथ और भी बता रहे हैं। सम्यक्त्व के बिना विशाल शास्त्र ज्ञान भी भार, जैसे भाव भासना हुए बिना शास्त्रों की विज्ञाएं भी विडंबना करने वाली होती है, ऐसे ही भाव भासना हुए बिना आत्म तत्व की विद्या जानकारी भी, विद्या ने वो जानकारी केवल उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल की, बहुत शास्त्र पढ़े अनुभव नहीं हुआ है, आत्म तत्व की विद्या की जानकारी, हाँ उसके लिए विडंबना अथवा भार रूप होती है। आत्मविद्या मिल जाए तो अच्छा है ना, ये तो सम्यक्त्व के बिना वाला ज्ञान उसकी चर्चा चल रही है। एक कथन है कि चार ज्योतिषी गए एक राज दरबार में। कहा हम लोग गुप्त प्रच्छन्न सब बातें बताया करते हैं, यानी छिपी हुई। राजा ने अपने हाथ में एक चीज ले ली और कहा अच्छा बतलाओ मेरे हाथ में क्या है। तो एक ज्योतिषी ने गणित लगाकर बताया कि आपके हाथ में सफेद चीज है। तीसरे ने कहा कि उस गोल गोल चीज के बीच में छेद भी है। अरे दूसरे ने क्या कहा, हाँ दूसरा कहाँ गया, दूसरा गायब हुआ शायद उनकी एक लाइन ही चली गई। और दूसरे ने कहा होगा उसमें बीच में छेद भी है,
उसने कहा होगा कि गोल गोल चीज है और इसमें तीसरा वाला
नहीं, तीसरे ने कहा उसमें गोल में छेद है। तो चौथा कहता है कि खोलो महाराज आपके हाथ में चक्की का पार्ट है। अरे उसको इतनी अक्ल नहीं हुई कि हाथ की मुट्ठी में चक्की का पार्ट कैसे आ सकता है। वह चीज गोल तो थी, सफेद भी थी, बीच में छेद भी था। अच्छा वो दूसरे ने सफेद है बताया, सफेद चीज है। दूसरे ने कहा वो गोल है, ये बीच में होना चाहिए था। देखो ना, पहले ने बताया हाथ में सफेद चीज है, दूसरे ने कहा वो गोल है, वो बीच में डालो, वह चीज गोल गोल है। तब तीसरे ने कहा कि गोल गोल चीज के बीच में छेद भी है। अब ये कह रहे हैं कि उसको इतनी अक्ल नहीं थी कि हाथ की मुट्ठी में चक्की का पार्ट कैसे आ सकता है। वह चीज गोल तो थी, सफेद भी थी, बीच में छेद भी था, मगर वह माला का दाना था, मोती जिसको कहते ना। जैसे जिसे चौथे ने कहा कि खोल दो महाराज चक्की का पार्ट है, तो भाव वासना बिना, विवेक बुद्धि बिना, शास्त्रों की विद्याओं से, अक्षरों की विद्याओं से मर्म तक नहीं पहुंचा जाता है। ऐसे ही आत्मा के संबंध में शब्द उतने ही है। अमूर्त क्या क्या शब्द है आत्मा के बारे में, कि आत्मा अमूर्त है, नित्य है, निरंजन है, सनातन है आदि। पर इतना बोलकर भी भाव वासना न होने से उसकी पहचान नहीं हो पाती है, पकड़ नहीं हो पाती है। ऐसे यह सब ज्ञान जो शास्त्रों के अभ्यास से संपादित किया है, वह ज्ञान भी अपने लक्ष्य को पकड़ने में असमर्थ रहता है। वही समस्त ज्ञान सम्यक उत्पन्न होने पर महामणि की तरह पूज्य हो जाता है। ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं, मगर उसने भाव वासना कर ली ना, तो वही ज्ञान उसका भी पूजक हो जाता है। ज्ञान की सम्यक्त्व के कारण समीचीनता। भगवान महावीर स्वामी के समय में इंद्रभूति नाम का एक विप्र था, विप्र ने ब्राह्मण, जो उस समय के विद्वानों में सर्व प्रमुख विद्वान था। इंद्र ने अवधि से जाना कि महावीर स्वामी की ध्वनि नहीं खिर रही है, उसको झेलने वाला भी कोई नहीं है, इसको झेलने वाला तो इंद्रभूति ही होगा। इसे किसी तरह समोचरण के नजदीक तक ले चले तो सबका कल्याण है। इंद्र वृद्ध रूप धरकर एक प्रश्न करता है जो बहुत प्रसिद्ध है। त्रैकाल्यम द्रव्य शतकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशा पंचाने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितये प्रोक्तमर्हद्भिरीशये प्रत्येति श्रद्धदाते स्पृशतमहिमान् यस्स वै शुद्धदृष्टि। ये चास्तिकाया नहीं, चास्तिकाया चाहिए, पंचान्ने चास्तिकाया, चा पंच अन्ने च अस्तिकाया। अभी उसका अर्थ त्रैकाल्यम तीन काल, द्रव्य षटकम छह द्रव्य, नवपद सहितम नव पदार्थ, जीव षटकाय लेशा छह काय, छह लेशा, पांच अस्थिकाय, व्रत समिति, पांच व्रत, पांच समिति, गति ज्ञान चारित्र भेदा, चार गति, पांच ज्ञान, पांच चारित्र, इन सब का विशद परिज्ञान और जहाँ जिस रूप आचरण करना है वह आचरण हो, यह सब मोक्ष का मूल है। वही तो उन्होंने क्या बोला वही तो बता रहे ना, उसको क्या सुनाया। जो इसकी श्रद्धा करता है, ज्ञान करता है, यानी ये मोक्ष का मूल है, ऐसा मरहद भी ऋषय ही, यानी भगवान ने बताया है। वो प्रत्येति श्रद्धदाति स्पृशति, जो उसकी श्रद्धा करता है, ज्ञान करता है और इसका स्पर्श करता है, वह सम्यक दृष्टि है, मोक्ष को प्राप्त होता है। इस छंद में संज्ञा के संकेत भर है, इसे वह स्पष्ट तो नहीं बता सका क्योंकि यह मूल मूल भाव मात्र है। यानी उच्च द्रव्य क्या होते हैं, नौ पदार्थ क्या होते हैं, छटकाय क्या होते हैं, अस्थिकाय क्या होते हैं, वो तो नहीं बता सका। किसी विवरण के साथ इस छंद में वर्णन नहीं है, लेकिन अपना अभिमान तो रखना था। यानी उसको उन्होंने एक प्रश्न करता है कि यही है जो है कि वो क्या है, ऐसा उसका प्रश्न था। उस समय के विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान था वह, तो अपनी शान रखने के लिए कहता है कि तुम्हें क्या बतलाएं, तुम्हारा कोई गुरु है, हम सीधा गुरु से बात करेंगे। उन्होंने कहा हाँ मेरा गुरु है, लीवालाया महावीर स्वामी के समोचरण में, वहाँ मानस स्तंभ देखकर उसका मान गल गया, सम्यक तो जग गया। ज्ञान तो सब पहले था ही, वह सब ज्ञान एक सम्यक तो जगे बिना, स्यादवाद का आश्रय लिए बिना जो विपरीत हो रहा था, वह समस्त ज्ञान अब सही सही रूप में वही तत्वभूत नजर आने लगा। अरे इसका तो स्टोरी सबको मालूम है, इनके देशना तो पूर्वभू की थी, तब तो कुछ कार्य नहीं हुआ था। अब जाके जिनबिंब दर्शन से वो पहले की बात भाववासन हो गई और सम्यक तो हो गया। सम्यक तो के बिना चारित्र का भार, यह बोझ सम्यक तो के बिना पाषाण की तरह बोझ रूप है और सम्यक से संयुक्त हो तो महामणि की तरह वह पूज्य है। जिसका आशय विपरीत है वह कितना ही प्रिय बोले, कितना ही बनकर बोले, आखिर वह घातक ही होता है। ऐसे ही जिस आत्मा का आशय विपरीत है वह कितना ही ज्ञान करे, वह सब ज्ञान खोटा ही होता है। जिस आत्मा का आशय विपरीत है, मान्यता जहाँ विपरीत चल रही है, कितना भी ज्ञान कर ले वो सब ज्ञान खोटा ही है। यही समस्त ज्ञान सम्यक तो सहित हो तो पूज्य है। ऐसी ही चारित्र की भी बात है। पंच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ती का पालन, 28 मूल गुणों का निर्दोष धारण, कितनी कठिन बात है। मन वचन काय को कितना ही संभाल करके यह दुर्धर व्रत किया जा सकता है, फिर भी जिसे कहते हैं कि भीतर की गुंडी नहीं खुली, ग्रंथि कहते ना, सबसे निराले केवल ज्ञान प्रकाश मात्र, असहाय स्वसहाय परम शरणभूत, आत्म सर्वस्व का अनुभव न हुआ, विकल्प में ही अटक रही, तो यह दुर्धर चारित्र भी पाषाण की तरह बोझ है। विकल्प में अटक रही यानी राग में एकत्व बुद्धि रही उनकी, क्या होगा, सम्यक तो रहित चारित्र से कुछ पुण्य का बंध होगा, देवगति में जन्म होगा, वहां विषयों में रमेगा, पाप बंध करेगा और फिर जहां भी उत्पन्न हुआ, मनुष्यों में अथवा तिर्यंचों में, वहां भी वही आदत बनेगी, संसार को लंबा करेगा, लाभ कुछ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि सम्यक्त्व जो एक दिग्दर्शन आश्रय है वह पास में नहीं है। दिग्दर्शन दिशा बताने वाला है ना, सही दिशा बताने वाला। सम्यक्त्व की लक्ष्य दर्शकता, जैसे पानी का जहाज अथवा हवाई जहाज चलाने वाले लोग अपने साथ कुछ ऐसा यंत्र रखते हैं जिससे दिशा का भान रहता है। हवाई जहाज नक्शे के आधार पर चलता है, आकाश में कहाँ लाइन है, कहाँ सड़क है, जैसे वहाँ अपने यंत्र के आधार पर ठीक दिशा में चला लेते हैं, यों ही मोक्ष मार्ग में चलने के लिए यह सम्यक्त्व दिग्दर्शक यंत्र है, दिशा बताने वाला यंत्र। चलना तो चारित्र से है, पर किस तरह चलना, यह सब दिशा बनाने वाला यह सम्यक दर्शन है। जैसे नाव खेलने वाले लोग अपने बल से नाव को आगे खेते जाते, नाव खेना समझते हैं ना, नाव चलाना, वो बल्हा जो है होते उसको कैसे मारना, नाव के खेने तक ही उनका काम है, पर किस दिशा में नाव जाए इसका अधिकारी तो वह करिया लेने वाला है जो नाव के पीछे बना रहता है। ऐसे ही चारित्र का काम तो उपयोग को कहीं रमाने का है, पर उपयोग कहाँ रमे, चारित्र का काम कहें ना स्थिरता, तो उपयोग को रमाने का है, पर उपयोग कहाँ रमे इसका निर्णय तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व पर निर्भर है। मिथ्यात्व का उदय है, विपरीत आशय है, तो चारित्र रमेगा विषय कषायों के लक्ष्य में, और सम्यक्त्व का आशय है शुद्ध चित्त है, तो उपयोग रमेगा शुद्ध ध्येय में, आत्म तत्व में। यह समस्त चारित्र भी सम्यक्त्व के बिना बोझ रूप है। सम्यक्त्व रहित पुरुष के अनशन से मोक्ष मार्ग में सफलता का अभाव। दूसरा एक मुझे एक उदाहरण याद आया, जैसे वो अभी बताया ना, वो खेते हैं, नाव खेते हैं, बहुत रात भर नाव खेई, परंतु सुबह उठकर देखा तो क्या, वही वो बंदी थी। तो कहाँ गया, इतनी मेहनत की ना, ऐसे ही चारित्र की मेहनत है कहते, बिना समय दर्शन के। सम्यक्त्व रहित पुरुष के अनशन से मोक्ष मार्ग में सफलता का अभाव, क्या कहते हैं, ये उपवास होता है ना उसको तप मानते हैं, और तप से निर्जरा होती है और हमारे कर्म कटते हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, सम्यक्त्व रहित पुरुष के अनशन से, अनशन उपवास आदि से मोक्ष मार्ग में सफलता का अभाव, यानी कोई सफलता नहीं, मोक्ष मार्ग शुरू भी नहीं होता है, कर्मों के कटने की बात तो दूर हो, वहाँ कोई निर्जरा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तपस्या भी बहुत कठिन होती है। अनशन करना, माह दो माह चार माह छह माह का अनशन करना कितना कठिन तप है, यहाँ तो एक बार भी भोजन छोड़ना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, इतना भी जाने दो, दो बार दिन में खाए, तीन बार भी खाए तो भी रात में खाने को मन ललचाता है, दिन भर खाया चलो रात को न खाए, इतनी भी सबर नहीं होती है, और मुनिराज दो चार माह तक का भी उपवास किया करते थे, अनेक साधु अथवा श्रावक अब भी पांच सात दिन का पर्वों में उपवास कर लिया करते हैं, उपवास की कठिन तपस्या करके भी यदि दिशा का भान नहीं है, क्या कहते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, इसका सही परिचय नहीं मिला है, तो इतना श्रम करके भी उसको मात्र श्रम कहा, मोक्ष मार्ग में कुछ भी सफल नहीं हो सकता।
यहाँ पर जो बताया है उपवास कठिन तपस्या है, तो ऐसे उपवास के अलावा अन्य कुछ करते हैं तो
सभी जो कुछ जो कोई तपस्या है तपस्या मानकर जो कुछ कर रहा है वो सब इसमें ले लेना,
यानी सामयिक करना।
बिल्कुल सभी कुछ आ गया ना उसके अंदर, यानी जो कोई क्रिया कर रहा है बिना सम्यक के कोरी क्रिया रह गई। वो हम गए थे ना दुबई में, वो कहते हमने दिन में इतनी सामयिक ले लेते, कितने 6 करते 8 करते 10 करते, और बहू को भी कहते वो तुम काम नहीं करना, जाओ सामयिक करो। हाँ हमको नहीं मालूम वो सम्यक तो सही थे कि रही थे क्या पता, जिसका जिसका उसका निर्णय करना चाहिए। हाँ 75 पृष्ठ पर आए, घर के काम से बचा जा सकता है और क्या। नहीं समझे, हमारे मैं मेडिकल में थी, बाद में भी बहुत बार सुना था कि ये म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है, इतनी लाइन लगती है सैकड़ों की, फिर भी कोई ऐसी औरतें होती थी कि बार बार आती थी वहाँ, इतना लाइन लगाकर यहाँ आती है क्या करती है, कोई सास आती थी कोई बहू आती थी, तो घर के काम से बचा जाता है, लाइन लगा लो वहाँ खड़े रहो। और किसी किसी को आदत होती है कि अपने को बीमार बता बता कर दवा लेने की। अच्छा हाँ, अरे नहीं वो साइकोलॉजी होती है ऐसी कुछ, तो कहते वो तो घर के काम से बचने के लिए वहाँ लाइन में खड़े रहते हैं दिन भर, दो दो चार चार घंटे। हाँ हाँ वैसे ही वो, हाँ ये इनको भी पता है। कोई बाजू वाले के लिए दवा लेने के लिए, औरों को मदद करने के लिए, वो तो अस्पताल में, क्योंकि जिसको मालूम है कहाँ जाना क्या करना तो उसके पीछे लगते हैं कोई ना कोई, और उसको भी मजा आती है बाहर घूमने में। जिसका आशय वो खुद जाने, हम दूसरों को कुछ नहीं कह सकते हैं। सम्यक तो रहित तपश्चरणों का भार, भैया एक अनशन ही क्या अनेक तपस्याएं ऐसी है जो दुर्धर है। गर्मी ऋतु की तपस्या, शीत ऋतु की साधनाएं, यानी गर्मी में वो भयंकर जहाँ वो जो सप्तायमान हो जाते हैं ना, खड़क क्या कहते हैं, रॉक रॉक, यानी वो तो पत्थर पर जाके वहां पर बैठ जाते हैं। हाँ शीत ऋतु में जैसे कुछ नदी के किनारे हो वहां जाके वो ध्यान लगा के बैठते हैं। बर्फ गिर रही है, ओस गिर रही है, जंगल में साधना कर रहे हैं, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, पर्वतों में विचर रहे हैं, ध्यान साधना में लगा रहे हैं, कितनी कितनी कठिन तपस्याएं हैं। लेकिन कोई साधु यदि यह विकल्प रखे कि मुझको मोक्ष पाना है और ये व्रत पालना है, मैं साधु हूँ, साधु हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता, सब कुछ सोचकर देह को लक्ष्य में लिया है, अथवा भीतर में एक यह त्यागमय विकल्प चल रहा है, उस विकल्प में उलझे हुए हैं, उस विकल्प को पार करके परम विश्राम न लिया जा सकता हो, तो ऐसी पर्याय बुद्धि का यह तपश्चरण भी एक बोझ है। देखो कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, और ऐसा नहीं है कि ये तो स्वामी जी के कोई अनुयायी है और उन्होंने वो तप करने वालों पर वो स्वयं वो उसमें क्षुल्लक के जो कुछ वहाँ आचरण होते उसको करने वालों में है ना, उनके आजू बाजू में सारे मुनियों के संग ही होते थे, फिर भी कितना स्पष्ट लिख दिया उन्होंने। यानी उस त्याग में विकल्प चल रहा है, उसमें उलझे हैं, उसको पार करके परम विश्राम न लिया जाए। जो कोई व्रतादि अंगीकार करते हैं तो बिल्कुल वो व्रत में कुछ भंग नहीं हो इसके लिए जितना चौकन्ना रहते हैं, तो क्या उस विकल्प से पार होकर कुछ अपने चैतन्यमय का अनुभव करने की कोशिश होती है, क्या वो व्रत पालने में वो चौकन्ना ज़्यादा रहते हैं, ये अब नक्की करते हैं। व्रत के पीछे ध्येय ध्येय यही है, अभी यहाँ लगा ना ऊपर, मुझको मोक्ष पाना है, ये व्रतों से मैं मोक्ष पाऊंगा, ये उसकी धारणा है। फिर से पढ़ते देखो, कितनी कितनी तपस्या है कठिन, चौथी लाइन। लेकिन कोई साधु यदि यह विकल्प रखे कि मुझको मोक्ष पाना है और ये व्रत पालना है, व्रत पालना ये मेरा कार्य है, मैं साधु हूँ, अपने को चैतन्य में नहीं अनुभव कर रहा, मैं साधु हूँ, साधु हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता, दूसरों को भी कहते आप तो साधु होकर बताओ, होता है ना ऐसा, यानी वो साधुपना में वो अहम बुद्धि आ गई है, सब कुछ सोचकर देह में, देह को लक्ष्य में लिया है, या वो विकल्प मोह आत्मबुद्धि हो रही है।
अपना के लक्ष्य के साथ किया जाए तो सब, आत्मा के लक्ष्य के साथ किया जाए तो सब,
आत्मा के लक्ष्य में पहले तो समय दर्शन हो जाए, बाद में ये बातें होती है। तो वो व्रत, तो व्रत, व्रत आपका प्रश्न है, तब तक तो व्रत करना चाहिए ना, तो व्रत करने से जल्दी मिलेगा, उससे क्या मिलने वाला है, वो नहीं करो वो नहीं चल रही बात, परंतु मान्यता में आशय में ये बात छिपी हुई है कि वो करने से मुझे जल्दी हो जाएगा। आत्मलक्षण नहीं लगा उसमें, कहीं मान्यता में छिपा हुआ है ये तो अच्छा कार्यकारी है, और ये जब तक नहीं होता तब तक क्या करना चाहिए, वो चाहिए वाला जोर उस पर आ रहा है। आप कह रहे तब तक जोर कहाँ है, वो शुभ भाव पर जोर है, जोर अगर नहीं आपको जोर देना है तो तत्व विचार का क्यों नहीं जोर देते, वो बात क्यों वो सोचती, हम ये नहीं कहते हैं पूजा, वो तो खाली स्थिर बैठने से तत्व विचार नहीं होता है, तत्व निर्णय सही होना चाहिए, उसके लिए तत्वों का सही अभ्यास होना चाहिए, खाली ऐसे बैठने से नहीं हो रहा, वो उसको बैठने की कोई जरूरत नहीं अलग से, जिसके स्वाध्याय करते करते भी वो शांत होकर अंतरंग में उसका चलता रहता है, ये निर्णय तक नहीं पहुंचता है, और वो कुछ करना 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 के पीछे है, एक क्रियाओं के पीछे पागल है, वो केवल एक उसने क्रियाएं बना ली, मैं ऐसे शांत होकर बैठू, तत्व विचार क्या कर रहा है, अभी तत्व का निर्णय सही नहीं है तो क्या तत्व विचार करेगा, खोटा विचार चल रहा है, ख्याल में आती है। पूजा का व्रतों का निषेध नहीं है, परंतु मान्यता में ये है कि उससे मुझे जल्दी मैं पाऊंगा, ये मान्यता इसके पीछे पड़ा है कारण, बिल्कुल पड़ा है, तत्व विचार से ही होगा, वो व्रत करो या ना करो उससे कुछ फायदा नहीं आपको, क्या अभी तक नहीं किया, अनंत बार ग्रेवेग जाके आया, ये आता है ना शास्त्र में, तो मुनि योगी सारे व्रत तब किए थे ना, तो वही तो कहाँ चालू हुआ है, हुए बिना चालू करने से कुछ नहीं होता, हुआ तो कहेंगे हम हुआ चालू किया, अच्छी बात है, यही करना योग्य है, समझ में आती है ना, इसको सबसे मुख्य बात ये है, तत्व का निर्णय, जैसे एक कितनी डंके की चोट कह रहे, एक द्रव्य दूसरे का कुछ नहीं करता, प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन करता है, उसका प्रत्येक पर्याय अपने से होती है, जो होनी है वो वही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर भी कहीं ना कहीं राग में अटका है, कहीं कहीं देह की क्रिया में अटका है बस, और उससे मैं भला हो रहा हूँ, ये तो खुश संतुष्ट होकर बैठा हूँ, तो ऐसी पर्याय बुद्धि का तपस्या नहीं, एक भी बोझ है ये पर्याय बुद्धि का तपस्या, मैं मनुष्य हूँ, मैं सामयिक कर रहा हूँ, मैं इतना पूजा कर रहा हूँ, इतना दान दे रहा हूँ, ये सब ये बोझ है उसका, एकत्व बुद्धि वाला, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मत करो, ये सब छोड़ दो और स्वच्छंदी हो, ये नहीं है, उसका सही अर्थ ख्याल में ले लो, क्योंकि अंदर ये मान्यता पड़ी है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, पहले से तो अच्छा हूँ, ख्याल में आई ना बात, तो वो पर्याय बुद्धि भी एक तपश्चरण भी एक बोझ है, और वही तपश्चरण सम्यक तो यदि है तो वह महामणि की तरह पूज्य हो जाता है, तब तो उसकी क्या महिमा हो जाएगी, अरे बिना किसी तप के व्रत के भी सम्यक की महिमा कितनी है, जो अविरतीय है, अभी चौथे गुणस्थान वाला है वो आया ना, वो ऐसे जो साधु है अनगार है, उससे भी ये गृहस्थ श्रेष्ठ है, यानी मोही अनगार से जो निर्मोही गृहस्थ भी श्रेष्ठ है। ग्रंथारंभ में धर्म प्रारंभक का निर्देश, धर्म प्रारंभक यानी सम्यक तो यही धर्म का प्रारंभ है, और हम पहले में पहले व्रत करना चाहते हैं, तब तक क्या करें? तब तक वही करें जो करना चाहते हैं। जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक विष पिए, समझ में? ये दोनों छोड़ने लायक है, ये पहले मान्यता में लेना, वो होते हैं उसकी बात नहीं है, होने योग्य व्रतादि के भाव हो गए उसकी, वो उसके ना नहीं है, माना क्या है वो करने योग्य। मान्यता में क्या है, तब तक ये तो करना चाहिए ना, ये मान्यता बता रही है, ये करना चाहिए वाली बात है। अरे वो तो छोड़ना चाहिए वाली बात करना चाहिए में ले ली, मान्यता में उसको लेना है। देखो ग्रंथारंभ में धर्म प्रारंभक का निर्देश, निर्देश यानी कथन, यानी इस ग्रंथ के शुरुआत में ही धर्म का प्रारंभ करने वाले जीव के बारे में बता रहे हैं, यानी समय दर्शन की बात पहले बता रहे हैं। सम्यक की आराधना करना यानी सम्यक तो प्राप्त करना, धर्म पालन के लिए सबसे पहले क्यों बताया गया है? इसका कारण यही है कि यथार्थ भान हुए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले ज्ञानार्जन, तत्व चिंतन, आत्म मनन करके अपने आप का यथार्थ निर्णय बना लेना चाहिए, अपना अभिप्राय विशुद्ध बना लेना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्वच्छता का तो यत्न न रखे किंतु व्रत चारित्र षटकर्म आदि क्रियाएं करने के लिए ही उद्यमी बन ही लगाया, केवल उसी में हृदय अपवित्र ही रखे, लोभ का रंग, मान का भूत, माया का जाल, क्रोध की ज्वाला कितनी ही बनी रहे, यानी लौकिक आचार विचार में तो कोई अन्याय अनैति उसको तो कोई विचार ही नहीं है, चाहे जैसे मायाचारी चलती हो, और यहाँ तो बातें तो आत्मा की करते हैं, तो ये कैसे होगा? जिनकी ओट में यह प्रभु ढका रहे तो उसके ये सब श्रम कार्य कर नहीं होते हैं, ये क्रोध मान माया लोग उसके तो जैसे है वैसे ही बने रहे, और बस समय के लेकर बैठा और मानता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, यानी वो क्रिया होकर रह गई है। ये तीनों ये दिगंबर भी है, श्वेतांबर भी है, सब में ये सामयिक की बात बताई, प्रतिक्रमण सामयिक से सब, क्योंकि वो तो दैनिक क्रियाओं में ही वो था पहले, अभी कहीं कहीं वो तो केवल उसके रूटीन रूप से पाठ बना दिए उसने, हमने इतना पाठ बोल दिया हमने सामयिक कर दिया, ऐसा हो जाता है। करने वालों को पूछो, बोलो सामयिक कहने क्या होता है, बोलो बेन। हाँ स्वाध्याय करने का, तो अभी क्या कर रहे हैं आप? ये सामयिक नहीं है ना? नहीं 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 होता है भगवान, यानी पंचपरमेश्वर स्मरण पूर्वक एकांत में बैठकर, देखो जब स्वाध्याय करेंगे तब जहाँ एकांत में कुछ विचार उसके आ सकते, ये करनी अच्छी बात है ना, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से शांत चित्त से उसको फिर ले लो चित्त में, वही तो करना है। परंतु केवल हमने इतना रूटीन बना दिया, इतने घंटे का कर दिया तो इतने, अरे ऐसे तो बैठे बैठे नींद नहीं आती तो भी हो जाएगा ना कि आत्मचिंतन, यानी ये निर्णय तक पहुँचने की बात छोड़कर बाकी सब क्रियाएं में लग जाता है। कर लो तब भी पुस्तक बैठो, पुस्तक सामने रखो, दो चार वाक्य पढ़ो, फिर उसके एक वाक्य पर लगाओ ना धुन, फिर वो नहीं चलते अन्य विचार आने, फिर दोबारा पढ़ो वहां से। तो केवल हमने उसको सामायिक नाम दिया इसलिए हमने अभी कर लिया, अभी इसलिए हमको यहाँ से हिलना नहीं डुलना नहीं, यानी देखो किसी क्रिया का यहाँ निषेध नहीं हो रहा है, परंतु क्या वो सही है, उसमें कुछ लाभ हो रहा है? अभी तो कितने सामायिक हुए तो उसका कुछ लाभ तो होना चाहिए था ना, यानी अभी कहाँ कचास रहेगी तत्व निर्णय, नहीं तो सामयिक के काल में सम्यक दर्शन भी तो होना चाहिए था, वो तो नहीं हो रहा है ना। देखो आगे बढ़ते हैं। सम्यक्तों की धर्म मूलता, किन्हीं दो चित्रकारों को एक सेठ ने कमरा दे दिया और कहा तुम दोनों एक एक भीम पर अपने अपने चित्र बनाओ। उनके बीच में एक पर्दा डाल दिया गया इसलिए कि वे दोनों एक दूसरे के चित्रों को न देख सके। अब उनमें जो होशियार चित्रकार है वह तो यह करेगा कि भीम की पहले सफाई करेगा चूना से तथा और मसालों से। यह सफाई वह तब तक करेगा जब तक कि उसे यह विश्वास हो जाए अब यह चित्रों को चमकाने वाली भीत हो गई। और दूसरा कारीगर बड़े अच्छे अच्छे रंग लाकर चित्रकारी में ही 6 महीना व्यतीत कर डालेगा। जब पर्दा उठाकर उनका मिलान करने के लिए देखते हैं तो किस कारीगर की चित्रकारी अच्छी है? पहले चित्र बनी हुई भीत पर दृष्टि डाले तो वे चित्र न चमकीले थे न उनमें कांति थी, क्योंकि ऐसी ही रद्दी सद्दी भीत पर बनाए गए थे। अब दूसरी ओर दृष्टि दी तो वह चमकीली भीत बनी हुई थी, उस पर सामने के सारे चित्र प्रतिबिंबित हो गए थे, देखने में बड़े सुहावने लगे। तो भीत की सफाई करने वाले को इनाम मिला, समझा कि उसने उसको इतना घिस गया कि तो अरीसा जैसा हो गया, उसने चित्र एक भी नहीं बनाया और उसके सारे झलकने लगे। यो ही कोई पुरुष अपने चित्त को उपयोग को स्वच्छ बनाए रहता है, सम्यक ज्ञान के मनन से जिसका धर्म पालन सही है, एक तो यह पुरुष है। और कोई पुरुष अपने को धर्मात्मा जताने के लिए कुछ विकल्प बनाए, मैं क्या हूं इसका भान न हो तो वह आत्मीय आनंद का लाभ नहीं उठा सकता। यही पुरुष जब समय को सहित हो जाता है तो उसके समस्त ज्ञान चारित्र और तप महामणि की तरह महिमा योग्य हो जाते हैं। सम्यक्त्व की अनिवार्यता है आत्मकल्याण के लिए। इस कारण आचार्य देव ने ग्रंथ के प्रारंभ में सम्यक्त्व आराधना करने के लिए अनुरोध किया है। देखो कोई भी ग्रंथ निकालो, श्रावकाचार का हो या कोई भी, सबसे पहले में पहला अधिकार है सम्यक्त्व का अधिकार, फिर बाद में सम्यक ज्ञान का अधिकार, फिर चारित्र की बात आती है। हमें मैं चरणानुयोग की बात की है यानी इसलिए कि हमें लगता है चरणानुयोग यानी केवल आचार की बात होगी, उसमें ऐसा नहीं है। रत्नकरण श्रावकाचार ले, कोई भी श्रावकाचार निकाल कर सोलह नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, 76 पेज। मिथ्यात्वातंकवतो हिताहित प्राप्त नाप्ति मुग्धस्य बालस्येव तवेयम् सुकुमारैव क्रिया क्रियते। मोहातंक ग्रस्त पुरुष को सुगम चिकित्सा का आश्वासन, ये आतंक कहा, मोह का मिथ्यात्व आतंक लिखा ना ऊपर, संसार के विषय कषाय के संकटों से छुटकारा पाने के लिए आचार्य देव ने सम्यक्त्व की आराधना बताई है। सम्यक्त्व की आराधना में कोई कष्ट नहीं है। देखो आचार्य उपदेश दे रहे हैं तो सबसे पहले कठिन उपदेश होगा कि सरल होगा? सरल। तो हमने पहले में पहले हम कठिन तप करना चाहते हैं क्योंकि हमने उसको मार्ग मान लिया है, उससे हमको मोक्ष जल्दी मिलेगा ये मान्यता में पड़ा है। जो सबसे सरल है वो करना नहीं चाहते, उसको कठिन मान के रखा है। इसलिए लोगों को प्रश्न ये जब तक नहीं होता तब तक क्या करें? रास्ते में जाते जाते फिसल गए, केले के छिलका पड़ा था, तो क्या करते हो, क्या करेंगे? वो तब तक क्या करेंगे? जब तक नहीं उठा जाता तब तक क्या करेंगे? वही तो यहाँ तो वही करना है, जब तक सम्यक तो नहीं होता है तब तक क्या करना है? सम्यक तो करने होने का प्रयत्न करना है, इन्हें क्या करना है? तत्व निर्णय करना है, स्वाध्याय का सही मर्म धारण करना है। ख्याल में आते? आप कहेंगे इतने दिन स्वाध्याय किया कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो तो आत्मसन्मुखता वाला बात हो रही गई, केवल सुनने की बात चालू रखी। ख्याल में आती है ना बात? देखो, कोई पुरुष इन बातों को कष्टदायी मानकर मानता है, कल्पना में भय करे, तो उसका भय निवारण इस छंद में किया गया है। यानी सम्यक को जो कठिन मानकर भयभीत होता है, उसको लगता है ये बहुत बहुत कठिन है, हमको तो उपवास करना अच्छा है, वो सरल लगता है, तो उसके लिए ये बात बता रहे कि मिथ्यात्व रूपी रोग से पीड़ित आतंक बताए ना, और इसी कारण हित और अहित की प्राप्ति और परिहार में, प्राप्ति और परिहार यानी वो जुटाना और छुड़ाना, हित को प्राप्ति करना और अहित का परिहार करना। फिर से मिथ्यात्व रूपी रोग से पीड़ित और इसी कारण हित और अहित की प्राप्ति और परिहार में बेहोश बालक की तरह, यानी वो इष्ट अनिष्ट का ग्रहण त्याग में ही बेहोश है, यानी उसी में पड़ा हुआ है, बालक की तरह अज्ञानी बालस्येव संसारी प्राणियों को हम सुकुमार क्रिया बता देंगे। सबसे अच्छी सरल अर्थात जैसे बालक रोगी हो जाए तो उस पर कठिन इलाज नहीं किया जाता, सुकुमार इलाज बता देंगे, भय करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे बच्चे को समझाते ऐसे समझा रहे कि बिल्कुल डरो मत, ये सबसे पहली बात है और सबसे सरल है। संसार रोग विवरण, विवरण है उसका विस्तार से बता रहे भैया, रोग तो इस जीव पर बहुत विकट है, अपने आप का आत्मा अपनी सुध में न रहे, यानी अपनी अपने लिए वो बेहोश है, अपने लिए सुध में न रहे, और बहिर्मुखी दृष्टि बनाकर अत्यंत भिन्न असार अहित परद्रव्यों को अपना माना करें। कैसे परद्रव्य? अत्यंत भिन्न है, असार है, उससे कोई हमारा कल्याण नहीं होने वाला, वो अहितकारी है, क्योंकि उसी के लक्ष्य में पड़े हैं हम, अपनी सुध खो बैठे हैं, उनको ही अपना माना करता है। ऐसी जो अंतरंग कलुषता बस गई है, यह क्या कम विपत्ति है? यानी सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है। इस जगत में मोही मोहियों का यह मेला है, इस कारण एक दूसरे के मोह की करतूत की प्रशंसा की जा रही है। नहीं समझे? प्रशंसा अपने दूसरे एक दूसरे के मोह की ही की जाती है, मोहियों का मेला है ना, और इसी कारण अपनी गलती विदित नहीं हो पाती, गलती किए जाते हैं और इन गलतियों का ही वो मान पत्र दिया जाता है। मैचिंग हो रही वो तो बात अलग, वो तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है, कैसा है मैच होती है उसको। यहाँ तो कहते कि मोही है, मोह करते हैं और वो मोह को ही अच्छा समझा जाता है। जी कोई ने धन कमाया बहुत, किसी ने अभी वो व्यवरता दी अंगीकार करिए, अभी वो पर्यूषण हो जाता है ना आपका, क्या करते फिर वो? तब कहते उसका सत्कार हो जाता है, तो क्या करते हैं? इसकी करतूत की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि बिना सम्यक्त्व के केवल उसी को मान लिया ना धर्म, तो उसमें अच्छा लगता है। और हम भी नहीं जाएंगे उनको कुछ नहीं देंगे भेंट, तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए शर्म के लिए वहां जाते हैं। फिर अच्छा, हम घर के बाहर ही नहीं पढ़ते कहेंगे। न किसी प्रसंग में न शादी ब्याह में। धन वैभव की वृद्धि में जीव किसमें फंसा हुआ है? धन वैभव की वृद्धि में, और दुनिया में उसी को अच्छा समझा जाता है। यानी अपने जो हम अपने को कैसे हाँकते हैं, कितना धन कमाते हैं, महीने का कितना कमाते हैं, वो ज्यादा बड़ा श्रेष्ठ है ना। यश प्रतिष्ठा के बढ़ावे में और भी नाना व्यामोहों में सभी जीव उलझे हुए हैं। इस कारण दूसरे की वृद्धि, सांसारिक समृद्धि निरख कर लोग प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करेंगे? उसके धन की करेंगे। तो उसने डिग्री हासिल की, उसने धन हासिल किया, उसने इतना किया, उसने वो किया, उसकी प्रशंसा की जाती है, दुनिया में उसको अच्छा माना जाता है। उसी ने अपने आत्मा को तो समझने में कुछ इतना भी योगदान नहीं दिया, उसका क्या कल्याण किया उसने। और ये मोही उस प्रशंसा में आकर अपने आप को भूल जाते हैं, यानी उसकी प्रशंसा में अपने को भी भूल जाते हैं। वो तो स्वयं भूला हुआ ही है और ये भी उसकी प्रशंसा में अपने को भूल रहे हैं, क्योंकि वो उसी को महान मान रहे हैं। यानी वो भले स्वयं नहीं उस धन संपदा को प्राप्त करे, परंतु उसको को अच्छा मानकर वो अच्छा है ये नक्की हुआ है उनके मन में, उनको नहीं भले प्राप्त हुआ है। यह विडंबना क्या इस जीव पर कम विपदा है? सुख दुख में सुकृत दुष्कृत की अधीनता। सुकृत है पुण्य, दुष्कृत है पाप। भले ही आज मनुष्य जन्म पाया है, संपदा विषय साधन का भी आराम बहुत है और दुनियावी विद्या की कला भी कुछ प्राप्त है। दुनियावी विद्या नहीं, लौकिक में जो कुछ विद्याएं हासिल करती है कुछ, इतना सब कुछ साधन मिल जाने पर भी क्या यह ठेका कोई ले सकता है? अब इस जीव के भविष्य में कभी भी इससे हल्कापन नहीं आ सकता है, उस पोजीशन से डाउन नहीं होगा, इसकी गारंटी है क्या कोई? प्रथम तो इस जीवन में भी विश्वास नहीं है कि जैसे आज है वैसे ही या उससे बढ़कर स्थिति रहेगी, और फिर मरण के बाद तो एकदम ही काया बदल जाती है। सुकृत किया हो तो, पुण्य किया हो तो उत्तम गति मिलती है, दुष्कृत किया हो अन्याय या धन वैभव की तृष्णा में आकर अपने आप को बर्बाद करना, दूसरों के प्रति अन्याय की वृत्ति करना आदि कर्तव्यों से यदि कुछ दुष्कृत बन गया हो तो जगत में जैसे और जंतु दिख रहे हैं, अन्य प्राणी जो हैं, कीड़े मकोड़े, घोड़े बैल गधे शुकर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कीड़े मकोड़े, ये सब इसी के तो प्रमाण है कि पाप कर्म का बंद हो तो एकदम ढांचा यूं बदल जाता है। क्योंकि वे भी कभी मनुष्य थे कि नहीं थे, उसमें से अभी ये पर्याय में आ गए हैं, उसका अर्थ क्या है? अपने परिणामों का फल भोग रहे वहां पर। हितार्थ ज्ञानोद्यम, ज्ञान का उद्यम है आत्मन। अपना हित यदि चाहता है तो इस भ्रम को तू तज दे कि संसार में इतने लोगों में हमें सर्वश्रेष्ठ कहलाना है और इसके लिए हमें अपनी संपदा का संचय करना है, इस बुद्धि को तू त्याग दे। यानी संपत्ति का संचय क्यों करना चाहता है? कि लोग हमके कुछ बड़ा कहेंगे। इस बुद्धि से संचय भी नहीं होता है, क्योंकि ये तो वर्तमान में पाप है, परिग्रह की तृष्णा है। जिसमें जैसी योग्यता है, जैसे पुण्य का जिसके उदय है, उसके अनुसार ये सब समागम, ये सब समृद्धि स्वयं ही निकट होती है। तू अपनी बुद्धि को अपने ठिकाने रख, समस्त जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव बना, किसी भी जीव को तू अपना विरोधी मत मान। कोई भी जीव तेरा विरोधी नहीं है, प्रत्येक जीव तेरी ही भांति अपने स्वार्थ को लेकर अपने कषायम की वेदना की शांति के लिए अपनी अपनी चेष्टाएं करे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रत्येक जीव, क्या हो कर रहे हैं? अपने कषायम को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसा उपाय सूझता है वैसे। तेरा कोई विरोध नहीं करता है, जो भी दूसरा पुरुष तेज लक्ष्य करके लक्ष्य लेकर विरोध करता हो तो सच मान वह तेरा विरोध नहीं करता। तेरा विरोध करने की सामर्थ्य किसी अन्य प्राणी में है ही नहीं। वे सब अपनी अपनी कषाय के अनुसार अपनी वेदना को मिटाने के लिए अपनी चेष्टाएं किया करते हैं। यह है वस्तु स्थिति। तू उन पर की चेष्टाओं को निरख कर अपने मन में द्वेष मत ला, वहां भी ज्ञाता दृष्टा रहे। मिथ्यात्व की वेदना। यह समस्त जगत मिथ्यात्व रूपी रोग से पीड़ित है। यहाँ जो कुछ भी परस्पर के व्यवहार है, जिन व्यवहारों में हम तुष्ट होते हैं, तुष्ट यानी संतुष्ट होते हैं, मौज मानते हैं, वे सब मोह की नींद के स्वप्न हैं। जिन व्यवहारों में, जिन लौकिक कार्यों में हम अच्छा मानते हैं, मोह की नींद के सपने हैं। ये सब समागम माया रूप है। आज मिले हैं, कल न मिलेंगे, नष्ट हो जाएंगे, कभी तो वियोग होगा ही। जिसका भी समागम हुआ है उसका नियम से वियोग होगा, चाहे वह सचेतन समागम हो अथवा अचेतन समागम हो, वियोग से होगा। बिछुड़ने पर दुखी होना ही पड़ेगा। जो बिछुड़ रहा है वह भी दुखी, और जो यहाँ रह रहा है वह भी दुखी। बल्कि मरने वाला पुरुष तो मरकर चला गया, उसे यहाँ की कल्पना का कुछ क्लेश नहीं रहा। नहीं समझे, मरते समय जो कुछ क्लेश हुआ उस बारे में छोड़ के जा रहा हूँ, बस उतना ही। मरने के बाद क्या, वो अन्यत्र पहुँच गया ना। किंतु यहाँ जो बच रहा है वह मरने वाले की याद कर करके कई वर्षों तक दुख भोगता रहता है। कोई कोई तो कितने सालों तक वो संक्लेश करते ही रहते हैं, हाय हाय मेरा ये था मर गया, मेरा ये था मर गया। मरने वाला उतने टोटे में नहीं रहा जितना कि जीने वाला रहा। मरने वाला तो चला गया, अभी वो छोड़कर अभी उसकी याद यहाँ की नहीं रहेगी कुछ, पर यहाँ जो बाकी रहते उनके तो उसकी याद ले लेके वो तो रोते रहते। अभी यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो तो वाणी मत कनम सदा देत हो।